जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवर गोपी जन वल्लभा यशोदानंदन जय जनर यशोदनन्दना जय जय जनरञ्जन जय यमुना तीरावन जय यमुना तीरावन जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवर हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Radha Vrindavan Chanda, Radha Vrindavan Chanda. स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की अनंत कोटि वैष्णववृंद की ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की निताय गौर प्रेमानंदे ओम नमः भगवते वासुदेवाय ओम नमः भगवते वासुदेवाय ओम नमः भगवते वासुदेवाय नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरय नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवय भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। तुम पढ़ रहे श्रीमद् भागवतम पंचमा स्कंद अध्याय क्रमांक 3 श्लोक संख्या 8। मैं श्लोक पढ़ूंगा, ये गद्य में है।
आत्मनाय बानु सवनम अंजसा व्यतिकरेण अभ्युभामानिशः अपुरुषार्थ स्वरूपस्य किन्तु नाथशीशः आससानानाम् एतद् अभिसंधृद्धा मात्रं भवितुम् अर्हति।
शब्दार्थ,
आत्मनः अपने आप इव निश्चय ही अनुसवनम प्रत्येक क्षण अंजसा प्रत्यक्ष अव्यतीत करेण बिना व्यवधान के वो भूयमान वर्धमान अशेषा असीम पुरुषार्थ जीवन लक्ष्य स्वस्वरूपस्य स्वरूपस्य आपका वास्तविक रूप किंतु लेकिन नाथ है ईश्वर आशीष भौतिक सुख हेतु आशीर्वाद असासानामानम हम सबके जिन सदैव कामना रहती है एतत् यह अभिसरंधना आपका अनुग्रह प्राप्त करने के लिए मात्रम केवल भवितुम अर्हति हो सकता है। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपामूर्ति अभय चरणारविंद। भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की अनुवाद। आप में प्रतिक्षण प्रत्यक्षतया स्वयमेव निरंतर एवं अशीत मत जीवन के समस्त लक्ष्यों एवं ऐश्वर्य की वृद्धि हो रही है। दरअसल आप स्वयं ही असीम सुख तथा आनंद में युक्त है। हे ईश्वर, हम तो सदा ही भौतिक सुखों के फिरे में रहते हैं, आपको इन समस्त यज्ञिक आयोजन की आवश्यकता नहीं है। ये तो हमारे लिए है जिसमें हम आपका आशीर्वाद पा सकें। ये सारे यज्ञ हमारे अपने कर्म फल के लिए किए जाते हैं और वास्तव में आपको इनकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। तात्पर्य, आत्मनिर्भर संपूर्ण होने के कारण परमेश्वर को बड़े बड़े यज्ञों की आवश्यकता नहीं है। जो आपने स्वार्थ के लिए भौतिक ऐश्वर्य की कामना करते हैं, उनके लिए सकाम कर्म की आवश्यकता है। यज्ञार्थ कर्मणंत लोकयम कर्म वंदनः। यदि हम परमेश्वर को प्रसन्न करने में लिए करने के लिए कर्म नहीं करते तो हम माया के कार्य में लगे जाते हैं। हम किसी विशाल मंदिर का निर्माण करके हजारों डॉलर व्यय कर सकते हैं, किंतु ईश्वर को ऐसे मंदिर की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर के पास अपने निवास के लिए ऐसे लाखों मंदिर है, उन्हें हमारा प्रयास की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्हें ऐश्वर्य के कार्य कदापि नहीं चाहिए। ऐसा कार्य तो हमारे आत्मा लाभ के लिए है होता है, क्योंकि यदि हम अपने धन को विशाल मंदिर निर्माण कार्य में लगा देते हैं तो हम अपने प्रयास के बंधन से मुक्त रहते हैं। ये हमारे कल्याण के लिए है। साथ ही यदि हम भगवान के लिए कुछ अच्छा कार्य करते हैं तो वे प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देते हैं। निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि ऐसे विशाल आयोजन ईश्वर के लिए नहीं अपितु हमारे अपने लिए होते हैं। यदि हम किसी प्रकार से ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त कर सके तो हमारा अंतकरण पवित्र हो सकता है और हम भगवान के धाम वापस जाने के भागी बन सकते हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जयशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोविष्णं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति तापदान्तितं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं मितं तं सजीवं चायुतं चावधूतं परिजनाशयितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदा सहगना ललिता श्रीविशाखा च नमो विष्णुपदाय कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चातदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरसुते नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते, गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वंशा कल्पतरु वश्या कृपा सिंधु च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कं करति वाचारं पङ्गुं लङ्घेति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीकृष्णचैतन्यं हरे कृष्ण श्रीमद् भागवतम की प्रातकालीन कक्षा में आप सबको हार्दिक स्वागत है। विशेष रूप से मैं श्रीमन राजश्याम प्रभु के कृपा की हो तो प्रत्यक्ष रूप में यहाँ पे उपस्थित नहीं है, लेकिन जरूर दूरध्वनि या इंटरनेट के माध्यम से वो सुन रहे होंगे। और बाकी जो भी वरिष्ठ रूप गोस्वामी प्रभु श्रीमान सुंदर श्याम प्रभु राम नित्य प्रभु महावीर प्रभु आचार्य रत्न प्रभु तो ये बहुत सुंदर अवसर के लिए मंदिर के व्यवस्थापक को भी मैं धन्यवाद और उनके आशीर्वाद की याचना करता हूँ ताकि ये जो लॉकडाउन पीरियड चल रहा है तो ये सबके लिए फायदेमंद हो। मेरे लिए हो रहा है इसलिए मैं चाहता हूँ सबके लिए भी हो, है ना। तो हम कई दिनों से ये पांचवा स्कंद का चर्चा हो रही है। पहला अध्याय जो था प्रियव्रत महाराज का कार्यकलाप, इसके बाद इनके पुत्र दूसरा अध्याय में अग्निधर, और अभी जो तीसरा अध्याय ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनके पुत्र बड़े पुत्र हुए नाभि और उनके धर्मपत्नी मेरु देवी, उनके गर्भ से जो भगवान का अवतरण होगा ऋषभ देव, और आगे जाके फिर उनके पुत्र जो होंगे भरत महाराज के चरित्र बहुत विस्तृत रूप से कई अध्याय में उसका वर्णन हो चुका है। तो ये तीसरा अध्याय राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव का जन्म। तो इस महीना में हम स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का जन्मदिन भी मनाए, और कुछ दिन पहले बलराम जी आविर्भाव होने से पहले उनके बड़े भ्राता बलदेव बलराम जी की आविर्भाव ना, इसके बाद हम उनके महान शिष्य महान भक्त श्री प्रभुपाद जी के आविर्भाव भी मनाया, और फिर अगले इस हफ्ते में हमने श्रीमती राधारानी के भी आविर्भाव का महोत्सव बनाएंगे। इसलिए भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम जो व्यति तत्वादेह पुनर्जन्म नहीं ती महावती से अर्जुन। तो जिस प्रकार भगवान का जन्म और कर्म अद्भुत होता है वो समझ में बहुत कठिन जाता है, मुश्किल जाता है ना। जन्म कर्म च मे दिव्यम, जन्म और कर्म, कभी कभी जन्म समझ में आता है लेकिन कर्म नहीं समझ में आता है, कर्म समझ में आता है और जन्म नहीं समझ में आता है क्योंकि भगवान अजन्मा है।
तो इसी प्रकार से उनके जो महान भक्त उनका कार्यकलाप को भी कभी कभी समझ में नहीं आता है कि वो भी कैसे पता है, क्योंकि जिस प्रकार भगवान का जन्म और कर्म दिव्य होता है, इस प्रकार भगवान के जो महान भक्त है उनका भी जन्म कर्म क्या होता है, दिव्य होता है। और भगवान ऐसे भी किसी ना किसी भक्त को, महान भक्त को माध्यम बना के इस पृथ्वी पे प्रकट होते हैं। तो पहला ये जो अध्याय शुरुआत होता है इसमें हमने देखा कि स्वयं यहाँ राजा नाभि और उनके पत्नी मेरु देवी के भक्ति से प्रसन्न होके वहाँ पे पुण्य पुरुषोत्तम भगवान वहाँ पे उनके सामने प्रकट हुए हैं। और ये जो ऋषि मुनिगण है ये सुंदर प्रार्थना से उनको ये प्रार्थना अर्पण करते हैं। ये पहला चौथा श्लोक से लेके 15वां श्लोक तक एक्चुअली ये इनकी प्रार्थना है। तो श्रीमद् भागवतम ने कहीं जाकर भी देखता है जहाँ पे भगवान स्वयं प्रकट होते हैं, जैसे ध्रुव महाराज के सामने प्रकट हुए, प्रहलाद महाराज के सामने भगवान, नरसिंह देव के प्रकट हुए, और वहाँ पे स्वयं अपने भक्त भगवान को सुंदर प्रार्थना अर्पण कर पा रहे उनके कृपा से। और हम देखते हैं पढ़ते हैं भागवतम में छठा स्कंद में जो देवता लोक जैसे वृत्रासुर का जन्म हुआ और वृत्रासुर के जो कष्ट से पीड़ित होके उन्होंने देवताओं लोग को प्रार्थना किए, लेकिन उनके प्रार्थना और यहाँ पे जो प्रार्थना बिल्कुल भूतिया में थी, क्योंकि देवता लोग जो प्रार्थना करते हैं तो वो अपने कामना के लिए या दुख से अत्यंत को दुख निवृत्ति श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की, जगन्नाथ वरदा सुभद्रा महारानी की, भूमिकाय की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की। तो देवता लोक, तो इसलिए भगवत गीता में बताया कि आ ब्रह्म भुवना लोक अर्जुन, चाहे कोई कितने बड़े देवता भी बन जाए लेकिन ये जो भौतिक प्रपंच है, जो भौतिक दुख है, भौतिक कष्ट है, पीड़ा है, उससे मुक्त होना संभव नहीं है। तो इसलिए भगवान एकमात्र व्यक्ति है जो ये सारे जो जीव राशि को, क्योंकि हम उनके अंश है, ममा वंश जीव लोक जीवभूत सनातन है, इसलिए वही जो हमको सारे दुख कष्ट से बाहर निकाल सकते हैं। तो केवल भगवान का आविर्भाव, देवताओं के सामने भी भगवान प्रकट हुए हैं लेकिन वो लोग भगवान का इतना सुंदर जो रूप है, माधुर्य लीला माधुर्य, उनको इतने सराहना नहीं कर पाते हैं क्योंकि इतना कष्ट है उनको, है ना। तो हम भी देखते हैं कि हमारे जीवन में भी कब कष्ट आते हैं और हम भगवान के सामने आते हैं, लेकिन भगवान का जो रूप माधुर्य है, भगवान का जो लीला माधुर्य है, उसको देखने मात्र है, भगवान का जो कृपा कटाक्ष है, हमारा दुख ऐसे ही छूमंतर हो जाएगा, है ना। लेकिन हम बार बार एक्चुअली कि क्योंकि हम इतने शारीरिक स्तर पर है, वो केवल हमारा अपने ही दुख हम बताने जा रहे हैं, है कि नहीं। तो इसलिए केवल बताया जाता है कि केवल भगवान के सामने प्रकट होना या भगवान के सामने देखना ये काफ़ी नहीं है। भगवान प्रकट होने के बाद, इसके बाद जो अंतकरण या हमारे जो ये में जो वर्ताव आता है, ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है कि कैसे इसको ये सीखने की बात है। लेकिन यहाँ पे जो ऋषियागण थे ये लोग भगवान को जब देखे, और तो इसलिए इन भगवान को जो सुंदर प्रार्थना अर्पण कर रहे हैं, जैसे भगवान के पूरे शरीर को कमल के साथ तुलना किया जाए, नमो पंकज नाभाय, कुंती महारानी जैसे प्रार्थना कर रहे हैं, नमो पंकज मालिने, नमो पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांग्री नमो, है ना। भगवान को तुलना किया जाता है यहाँ पे कमल के साथ, या भगवान को कभी कभी चंद्रमा के साथ भी तुलना किया जाता है, क्योंकि जैसे ब्रह्मा जी का जन्म हुआ भगवान के नाभि कमल से, कमल के, तो इसलिए ब्रह्मा जी से पहले कोई भी वस्तु इस पृथ्वी पे था ही नहीं है। तो इसलिए केवल एकमात्र, वो भी काफी नहीं है कि हम भगवान को कमल के साथ तुलना किया गया, लेकिन एक वही वस्तु था, इसलिए केवल कमल के साथ उनको तुलना किया जाता है या चंद्रमा के साथ, है ना। तो इसलिए देवता लोग ऐसे, ये जो ऋषियाँ यहाँ पे भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं, हो सकता है कि जो प्रार्थना कर में है ये भगवान के लिए कुछ भी नहीं है, है ना, ये बहुत ही आंशिक है, मतलब थोड़े मात्रा में है, है ना। तो क्योंकि हम भगवान को पूरे मात्रा में, हम भगवान का गुणगान नहीं कर सकते, जैसे अनंत शेष के बारे में बोल रहे हैं बलराम जी, जिनका अनंत फण में अनंत काल से भगवान का अनंत गुणगान कर आ रहे हैं, लेकिन वो कभी समाप्त नहीं कर पा रहे ना। तो हम चुच्छ जो नगण्य जीव है, वो भगवान को कैसे हम गुणगान कर सकते हैं, लेकिन भगवान इतना सीम है, भगवान इतना दयालु है, उन्हीं के नाते भी भगवान भावग्राही जनार्दन है, तो इसलिए वो केवल भाव को ग्रहण करते हैं, है ना। तो तीसरा चौथा श्लोक में बताया गया कि भगवान जो प्रकट हुए, शुरुआत ये जो प्रार्थना की, ऋषियों को जो प्रार्थना की शुरुआत, वहाँ बताया कि और ये ऋषि लोग आपने कमियां बताते हैं कि हम आपको सही ढंग से, क्योंकि भगवान का एक नाम है अपरमेय, कि भगवान को अवर्णनीय है ना, हम आपका गुणगान नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो भी हम कर पा रहे हैं तो इससे ये फायदा होता है कि सकल जन निकाय विज निराशन, सकल जनता जनराशि है, इतने में क्या हो जाता है कि उनका जो दुख और कष्ट क्या होता है मिट जाता है, है ना। कोई अगर पूरे मात्रा से और अच्छी ढंग से अगर भगवान का गुणगान करना चाहेगा तो कितने फायदेमंद उसका होगा। तो इसका उदाहरण देख सकते हैं, जैसे कभी कभी कोई अगर बहुत बड़ा व्यक्ति, मान लो कि भारत के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जी, वो सबसे बड़े व्यक्ति माना जाता है, उनके साथ साथ मान लो कि वो कोई बड़े, जैसे आजकल बड़े बड़े क्लब होता है, लायंस क्लब है ना, रोटरी क्लब, तो उनका भी अध्यक्ष है, ऑनररी है ना, तो उनको कभी गुणगान किया जाता है कि आप इस क्लब का अध्यक्ष हो, तो उनको लिए काफी नहीं है वो, उससे मतलब एक छोटा मोटा है, नहीं ये तो पूरे इतने बड़े भारत के प्रेसिडेंट अध्यक्ष है, तो उनके गुण अपने नहीं, लेकिन फिर भी एक्चुअली उसको क्या करते हैं, वो स्वीकार करते हैं, वो कभी नाराज नहीं होते कि यार आपने मुझे सही ढंग से गुणगान नहीं कर पाया। फिर हम देखते हैं कि छठा श्लोक में बहुत सुंदर ढंग से मेरे श्री चैतन्य चंद्र प्रभु बोले, लिटिल डिवोशनल सर्विस एंड लविंग डिवोशनल सर्विस, है ना, थोड़ा मात्रा भी अगर कोई भगवान को भक्ति करता है तो भगवान उसका ऋण कभी नहीं चुकते हैं। और फिर हमने इसके बाद वाला श्लोक, सातवां श्लोक में हमने देखा, लॉर्ड इज प्लीज बाय सिंपली ऑफरिंग्स, नो नीड ऑफ एलाबोरेट वर्शिप, और उसमें रूपा जी लिखते हैं जैसे विदुर जी, क्योंकि वहां पे भगवान को 56 भोग के द्वारा दुर्योधन ने उनको बुला रहे क्या आ जाइए, लेकिन उतने बड़ी मात्रा में अपमान किए ना, ना तो भगवान को भूख था ना भगवान को प्रेम था दुर्योधन के प्रति। संसार में देखते हैं किसी व्यक्ति को अगर भूख है तो वो दूसरे का स्वीकार करेगा, कोई अगर बुलाते हैं तो, या प्रेम अगर प्रेम है तो इसलिए भगवान चले गए कहाँ पे, विदुर के घर में चले गए, और भाव है, हो सकता है कि पता नहीं भगवान के द्वारा कोई अगर केला के छिलका अगर किनको देंगे तो कोई प्रसन्न होंगे, अभी तो जन्माष्टमी के बाद मंदिर में इतने सारे केला, इतने सारा फ्रूट आया, फल पूरा भर गया है ना, पूरे लॉकडाउन का जो हमने तपस्या कर रहे थे है ना, खास करके एकादशी को भगवान ने इतने मात्रा में दिए, इतने मात्रा में दिए, एक दूसरे को बांट रहे लो है ना, आज अभी भी खत्म नहीं हुआ। और फिर इस श्लोक में बताया जाता है कि भगवान आपको जरूरत नहीं है जो बड़े बड़े यज्ञ करना, समारोह करना, बड़े बड़े वस्त्र आपको अर्पित करना। सो ये वस्तु आपको ये जरूरी नहीं है, लेकिन हमको जरूरी है, क्योंकि हम अगर इसमें करेंगे, ये सेवा करेंगे आपको, तो इसमें हमारा भलाई होगा, हमारा शुद्धिकरण होगा। तो इसलिए यहाँ पे बताया जाता है कि भगवान का गुणगान करना और भगवान का प्रार्थना अर्पण करना, चौथा और पांचवा श्लोक में भी यही बताया कि बार बार भगवान को प्रणाम करना और भगवान का गुणगान करना है ना। तो फिर बताया गया कि क्यों भगवान को इस सबकी जरूरत नहीं है, है ना। तो इसलिए बताया गया कि आप जो है आत्मन है, मतलब आप आत्मकाम है, आत्माराम है, है ना, आपको किसी वस्तु की जरूरत नहीं है। अनुशवतम मतलब प्रत्येक क्षण, और अंजस्सा मतलब डायरेक्टली या प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से, और अव्यवतीकरण बिना व्यवधान के, जो बताते हैं अनइंटरप्रिटेड, है ना। शुद्ध भक्ति का परिभाषा क्या है, शुद्ध भक्ति परिभाषा क्या है, अन्य अभिलाष शून्यम ज्ञान कर्म अनावृतम अनुकूलेन कृष्णार्पण भक्तिर उत्तमम, है ना। और बताया कि बहुधानम मतलब वर्धमान अशेष असीम रूप से पुरुषार्थ है, क्योंकि भगवान के अंदर जो भी संसार के व्यक्ति धर्म अर्थ और काम और मुख्य ये चार चीज मांगता है, और भगवान के पास असीम रूप से क्या है, परिमाण मात्रा में उनके पास है, है ना। तो भगवान को कैसे कोई व्यक्ति संतुष्ट कर सकता है जिसके पास ये सब कुछ है। तो इसलिए भगवान प्रसन्न होते हैं। और उतना नहीं है, भगवान जो है, भगवान जो सारे स्तोत्र का, है ना, अनलिमिटेड एंजॉयमेंट एंड ब्लिसफुल एग्जिस्टेंस भगवान का इसलिए स्वरूप क्या है, सत्य चित और आनंद का विग्रह, और प्रत्येक क्षण भगवान को आनंद की उपलब्धि होता है। इसलिए हमारे कोई जरूरत नहीं है भगवान को। तो इसलिए वृत्रासुर के गुण के बारे में छठा स्कंध में जो सुंदर श्लोक बताया जाता है कि ननाक पृष्टम पारमाष्टव्यम न सर्वभौमम न रसाधिप्यम न योग सिद्धति अपूर्वभम समंजसा त्वया विरह न कंखे। तो ये वृत्रासुर के, अब वृत्रासुर और इंद्र का इस लड़ाई में वृत्रासुर इंद्र को बोल रहे कि मुझे आप जितना जल्दी हो मुझे मारो एक्चुअली, क्योंकि जितना जल्दी मेरे ये शरीर को छोड़ूंगा मैं आपके पास निकट में आ सकूंगा, है ना। तो ये प्रार्थना सुन के इंद्र भी ये हो गया कि अरे इतने बड़ी लड़ाई हो रहा है, ये लड़ाई में भगवान को याद कौन कर सकता है, मतलब हम तो छोटे मोटे लड़ाई में भगवान को भूल जाते हैं, इतना बड़े लड़ाई में भगवान को कैसे याद कर सकते हैं। तो वृत्रासुर बोलते कि ननाक पृष्टम, मुझे ना तो कोई स्वर्गलोक की अपेक्षा है, ना कोई ध्रुवलोक की अपेक्षा है, ना च परमास्मति, ना मुझे ब्रह्मलोक की भी अपेक्षा है, न सर्वभौम, मुझे कोई पृथ्वी लोक पर भी अपेक्षा नहीं है, ना रसाधिपत्य मतलब नीचे के लोक भी मुझे कोई नहीं, न योग सिद्धिर अपनर्भवम, ना मुझे मुक्ति की कोई कामना है। तो मुझे केवल आपकी, क्योंकि आप जो है समंजसा सोर्स ऑफ ऑल अपॉर्चुनिटी, भगवान के चरण में कोई आते हैं तो सारे सुविधा उपलब्ध होता है। इसलिए तो विराह कांख है, इसलिए मुझे कोई इच्छा नहीं है, केवल आपके चरण का मुक्ति थी। तो ये भगवान के जो शुद्ध भक्त भगवान को कुछ क्यों नहीं मांगते हैं, है ना, क्योंकि अगर हम भगवान को ये धर्म अर्थ और काम मुख्य ये सब मांगते रहेंगे तो हमारा भगवान के पास जो जाना, मतलब जो ये क्या हो जाता है, दूर चले जाते हम, है ना। थोड़े अगर हमको इंद्रिय तृप्ति प्राप्त होता है तो भूल जाते भगवान को, और ये बड़े बड़े जो देवता लोग है ना, उनको इतने मात्रा में अगर इंद्र तृप्ति प्राप्त होगा तो कैसे मतलब कोई भगवान को याद कर सकते हैं, कर सकते हैं? तो इसलिए भगवान भगवान के शुद्ध भक्त भगवान को ही प्रार्थना करते हैं कि मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल क्या चाहिए, केवल शुद्ध भक्ति चाहिए। तो इसलिए मैं आपके पास जल्दी वापस आना चाहता हूँ। तो फिर प्रभुपाद जी ने तीसरा स्कंद भगवद गीता के नवम श्लोक में जो व्याख्या करते हैं, आप मतलब यज्ञ अर्थ कर्मंत्र लोकयम कर्मंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचरः। तो भगवान को हम सेवा करते हैं और बाकी सांसारिक लोग भी वो इंद्रिय तृप्ति करते हैं, है ना, वो भी अपने इंद्रियों को किसी न किसी की सेवा में, सेवा में तो नहीं एक्चुअली इंद्रिय तृप्ति में लगाते हैं। दोनों तरफ से लगता है कि दोनों भी कार्य कर रहे हैं, लेकिन हम जो कार्य कर रहे हैं, भक्त लोग जो कार्य कर रहे हैं, उस कार्य से वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। प्रभुपाद उसका उदाहरण देते हैं, जैसे हम देखते हैं कि हम बचपन में कभी पतंग उड़ाते थे, है ना, जो पतंग उड़ाते थे तो दूर से दिखना ही पड़ता था कि एक्चुअली वो रील घूम रहा है और उसमें धागा आगे जा रहा है एक्चुअली पतंग, है ना। और लेकिन उसमें दो कार्य होता है ना, पतंग आगे भी जाता है और उसको उल्टा घुमाने से एक्चुअली क्या होता है, वो वापस आता है, है ना। तो देखने से बाहर से दिखाई पड़ेगा कि भक्त लोग भी कार्य कर रहे हैं, वो भी कंपनी में जा रहे हैं इतने, है ना, लेकिन दोनों में बिल्कुल अंतर है। भगवान की सेवा करने से हम कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। नरोत्तम दास ठाकुर बोलते छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तर पाए छे केवा, है ना। तो 11वां पहला स्कंद का 11वां अध्याय, भगवान जब वापस जा रहे द्वारका में, सारे द्वारकावासी क्या कर रहे, अपने ये क्षमता के अनुसार क्या कर रहे, भगवान का उनको ये कर रहे, अलग अलग कीमती जो वस्तु अर्पण कर रहे हैं, उनको प्रार्थना अर्पण कर रहे हैं। तो उसमें बताया गया है कि भला भगवान को कौन क्या दे सकता है, तो उसमें बताया गया कि तत्रोपनीत वालयो रवेर दीपम वापृतः, सूर्य को दिया दिखाने जैसे, हम कभी कभी पहले भी दिखाते थे, है ना, सूर्य को, या अभी लॉकडाउन के पीरियड में श्रीमान मोदी जी ने बोले सबको दिया दिखाना ना संध्या के समय, है ना, तो सूर्य को दिया दिखाना, तो मतलब हम जानते भी कि सूर्य के सामने कभी कभी दिया तो दिखाने मतलब बुझ जाते है, है ना। तो सूर्य के सामने दिया दिखाना मतलब ऐसे ही है, या कभी पवित्र नदी या कुंड में जाते हैं और उस नदी को पानी को क्या करते हैं, फिर नदी में वापस डालते हैं। इसलिए भगवान ने जो कुछ हमको दिए हैं तो इसके द्वारा हम भगवान को पुनर् इसको अर्पित करना। प्रभुपाद जी बताते हैं किसी व्यक्ति पिताजी जो है अपने पिताजी का जन्मदिन में बेटे को पैसा देता है, जा मिठाई लेके आओ, वो मिठाई लेके आता है और खोल के पहले क्या करता है, पहले पिताजी को अर्पण करता है, उससे पैसा है, उनका जन्मदिन है, उनको अर्पण करता है, पिताजी केवल उसको स्पर्श करते हैं, थोड़ा सा मुंह में लगाते हैं और बाकी सब उसका हो जाता है ना। तो इसलिए भगवान बोलते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तो यम यो मक्ते प्रायश्चित्ति। तो भगवान को देने से कभी किसी का कमी नहीं होता है, क्योंकि सब कुछ उनका ही है, तो इसलिए उनके सेवा में लगना चाहिए। लेकिन प्रभुपाद जी उसके तात्पर्य में बहुत सुंदर लिखते हैं, मैं अंग्रेज भी पढ़ूंगा। इन द वर्शिप ऑफ द सन देयर इज सम सॉर्ट ऑफ डिमांड मेड बाय द वर्शिपर, बट इन द केस ऑफ डिवोशनल सर्विस टू द लॉर्ड देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ डिमांड फ्रॉम आइदर साइड। देखते ना किसी व्यक्ति को, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बता रहे थे कि कितने बड़े व्यक्ति क्यों ना हो, उस व्यक्ति को अगर एक तुलसी के दल, तुलसी के एक पत्ता अगर अर्पित करेंगे, व्यक्ति खुश हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। जितना बड़ा व्यक्ति है उसका इतना बड़ा डिमांड है, इतना बड़ा। लेकिन यहाँ पे दोनों साइड से कोई डिमांड नहीं है, इट इज ऑल ए साइन ऑफ प्योर लव एंड अफेक्शन बिटवीन द लॉर्ड एंड द डिवोटी, क्योंकि भगवान जो है भावग्राही जनार्दन है। और फिर प्रहलाद महाराज जो भगवान को सुंदर प्रार्थना अर्पण किए, उस प्रार्थना में भी भगवान प्रहलाद महाराज भी उसी का उदाहरण देते हैं, है ना। नैवात्मनम प्रभुर अयम निज लाभ पूर्ण मानम जनाद अविदुष कर्णो वृता यद्यज्ज जनो भगवते विदिधात मानम तस्सामते प्रति मुखस्य यथ मुखश्री। बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं, जैसे शीशा के सामने है ना, अगर शीशा को कोई अगर सजाता है वो सुंदर नहीं बनता है। तो इसी प्रकार अगर भगवान को हम अर्पण करते, भगवान को सजाते हैं तो हम सुंदर बन जाते हैं। और सबका हम यहाँ पे बैठे राधा कुंज विहार या राधा वृंदावन चंद्र को इतने भव्य रूप से उनका श्रृंगार होता है, उनको भोग लगता है, और तो हम इससे एक्चुअली मुक्त हो जाते हैं। हमारा जो कामना है, भोग करने की जो प्रवृत्ति है, वो सेवा के द्वारा क्या होते हैं, मुक्त हो जाता है। इसलिए सेवा की कोई कमी नहीं है, है ना। हमको लगता था कि साल में एक बार मैराथन होगा, है ना, वो भी दिसंबर में है, है ना। तो दिसंबर महीना आता है तो हमको याद आता है, लेकिन अभी साल में दो दो बार मैराथन शुरू हो रहा है ना, क्योंकि उनके है ना गुरुजन जो है वो भी चैन में नहीं बैठ पाते एक्चुअली, है ना, क्योंकि माया का। इसलिए गुरु महाराज जी हमेशा बताते थे कि 365 दिन माया का क्या है, मैराथन चलता है। तो हम कैसे संतुष्टि बैठ सकते हैं, किसी न किसी रुपये से हाथ पर क्या करना चाहिए, हिलाना चाहिए, है ना। जैसे यहाँ पे बनाया कि भगवान की किसी वस्तु की जरूरत नहीं है, लेकिन भगवान के सेवा करने से हम एक्चुअली शुद्ध हो जाते हैं, है ना। तो इसलिए सबको सेवा में लगाने के लिए ये जो बहुत सुंदर व्यवस्था है, इसलिए शब्द आते हैं अविदुष। हु डज नॉट नो दैट द एम ऑफ लाइफ इज टू प्लीज द सुप्रीम लॉर्ड, है ना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भगवान, इसलिए प्रभुपाद जी दसम स्कंद में जो बहुत ही सुंदर आता है, कथा आता है, जब भगवान कृष्ण द्वारका से मिथिला के लिए प्रवास कर रहे थे, और उस समय बहुत विस्तृत रूप से वर्णन है, उन्हें दो एक ब्राह्मण जो थे श्रुतदेव और एक राजा जो थे मिथिला के राजा मिथिला नरेश बहुलाश, तो दोनों को उन्होंने कैसे कृपा किए थे। तो भगवान जब द्वारका से निकले और पूरा रथ की सजबज हुआ, तैयारी हुआ, और भगवान के सामने भगवान क्या किए कि बाकी केवल भगवान अकेले नहीं है, जितने भी ऋषि मुनिया थे, भगवान बोले कि आप सबको भी मेरे साथ चलना है। तो प्रभुपाद जी वहाँ लिखते हैं कि अगर भगवान के साथ वो चलने चाहते हैं तो उनको तो पैदल, वो तो कभी बड़े कोई साधन इस्तेमाल नहीं करते, उनको तो चलने जाना पड़ेगा, वो थक जाएंगे क्योंकि इतनी लंबी यात्रा है। तो इसलिए भगवान ने बोले कि आप मेरे रथ में बैठो। पता नहीं वो रथ कितना बड़ा होगा, भगवान तो उसको विस्तार कर सकते हैं, है ना। तो वहाँ पे यह आता है कि वहाँ पे नारद मुनि, अत्रि, व्यासदेव, वामदेव, परशुराम, असित, अरुणी और स्वयं सुखदेव गोस्वामी और फिर बृहस्पति और फिर मैत्रेय और कन्व और फिर चवन एंड अदर्श, और बाकी सब का नाम लिख नहीं पाए। तो इतने सारे को बैठा के भगवान, तो मैं भी सोचता था कि जैसे हमारे गुरु महाराज भी कभी कहीं जाते हैं तो पहले देखते हैं कि गाड़ी पूरा फुल हुआ कि नहीं, है ना, तो बोलते कि बैठो एक्चुअली, है ना। तो भगवान क्या जो है, इस प्रकार जो भगवान अपने कभी भक्तों को कभी भी नहीं भूलते, अपने सबको लेके गए और पहुंच वहां पे पहुंचने के बाद तो उनके इतना बड़ी मात्रा से पूरा जो मिथिलावासी एक्चुअली उनको स्वागत किए। और उसी सभा में राजा तो थे ही, आई थिंक इनके साथ जो ये ब्राह्मण थे श्रुतदेव, हाँ, तो वहाँ पे सुखदेव गोस्वामी लिखते कि बहुत ही संतुष्ट थे वो और फुल्ली तरफ से शांति प्रिय थे और उनका मन और इंद्रिय पूरी तरफ से नियंत्रण था। तो भी भगवान का गुणगान किए और भगवान को दोनों राजा बहुलाश और श्रुतदेव उनको निमंत्रण दिए कि हमारे घर में आतिथ्य ग्रहण कीजिए। ये तो स्वाभाविक है, भगवान अगर गए तो राजा के घर में, है ना, लेकिन फिर भी मुख्य थे। और वहाँ पता नहीं, मुझे पहली बार ये पता चला जो मैं पढ़ा, इसलिए प्रभुपाद का ग्रंथ पढ़ना चाहिए तो प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान ने दोनों का इच्छा पूरा करने के लिए साथ साथ में मतलब साइमल्टेनियसली भगवान ने दोनों को घर में गए अतिथि सत्कार मतलब स्वीकार करने के लिए। और दोनों को ये पता नहीं था जो भगवान जो श्रुतदेव के घर में गए बहुलाशा के घर में गए वो तो उनके इतने बड़े भव्य था और था। तो उनको जब ये तो उनको लगा कि भगवान मेरे घर में आए तो वो दुखी हो गए होते उनको भावना थी। लेकिन जब भगवान उनके घर में गए साथ साथ में श्रुतदेव ब्राह्मण के घर में तो उनको लगा कि भगवान मेरा अतिथि सत्कार किए राजा के घर में नहीं तो उसको भी दुख लग रहा था है ना। तो हम देखते हैं कि जब कोई बड़े सन्यासी आते हैं तो उनको लोग बुलाते हैं आप मेरे घर में आइए ये प्रोग्राम है ना। तो ये संभव नहीं होता कि सबको एक साथ संतुष्ट करना। लेकिन भगवान दोनों के साथ में दोनों के घर में उनके अतिथि सत्कार किए और दोनों को संतुष्ट किए है ना। जो भी उनके पास में था तो यह राजा तो पास में कोई कमी नहीं था राजा। और फिर यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ये तो राजा थे ठीक है ब्राह्मण गरीब है वो तो आ नहीं सकता था लेकिन ये दोनों जो है बहुलाशा और श्रुति देवी वो अपने घर में अपने विग्रह का स्थापना किए थे और विग्रह का पूजा कर रहे थे इसलिए उनको समय नहीं मिला कि द्वारका में जाके भगवान को साक्षात करेंगे। तो बड़ा आश्चर्य लगा कि वो ना इतने बड़े राजा है नौकर चाकर है रानी है इतने सारे ये है तो किसी को देख के वो जा सकते थे है ना। या कभी कभी हम देखते हैं कि भक्त लोग यात्रा में जाते तो अपने विग्रह को साथ में लेके जाते है ना। तो उनके विग्रह के प्रति कितने प्रेम होगा वो कभी नहीं गया इसलिए भगवान गए उनको दर्शन देने के लिए और इस दर्शन में इतने संतुष्ट है और उनको भगवान बहुत सुंदर उपदेश है खास करके जो ब्राह्मण है श्रुतदेव है क्योंकि वो इतना भावेबल हो गया था अपने पत्नी परिवार के साथ भगवान का गुणगान कर रहा था भगवान को पाद प्रक्षालन कर रहा था। और उतने में और दोनों भगवान को बोले कि आप कुछ समय के लिए हमारे घर में रहिए ठीक है। राजा तो इतने बड़ा सत्कार किया लेकिन देखा जाए तो ये ब्राह्मण इनके पास क्या है तो उनके पास जो भी सामग्री था उसके उसमें भगवान को सत्कार किया इतना नाचा कुछ था ही नहीं उस पर बजाने के लिए बजाने वाला नहीं हो सकता होगा क्योंकि अगर भगवान आ रहे तो बाकी लोग भी आ जाएंगे बजाने वाले गाने वाले है ना। तो लेकिन फिर भी वो इतना उत्साह था अपने उत्तरी को लेके है ना कुछ था ही नहीं एक्चुअली कुर्ता भी नहीं होगा है ना तभी कुर्ता भी पहनते नहीं थे उतने लेके इतना नाचने लगा इतने लगा भगवान इतने प्रसन्न हो गए। और यहाँ पे बताया जाता है कि उसके पास और केवल भगवान स्वयं नहीं गए जितना भी पार्षद गए थे अवसितादेव नारद मुनि वगैरह सब लोग भी साथ में गए थे तो उनको भी आसन देना पड़ेगा भगवान को दे रहे तो उसके पास आसन नहीं था इसलिए पड़ोसी से उधार लेके उनको दिया है ना। और उसका उदाहरण मैं स्वयं अनुभव किया हूँ अभी तो मैं गाँव नहीं जा रहा हूँ लेकिन पहले जब गाँव जाता था है ना कभी साल में एक बार जाते थे वो मेरा जो ग्रैंड मदर है ना तो जो भी बनाती थी और इतने में पूरे आजू बाजू में जितने पड़ोसी थे सब लोग कुछ ना कुछ एक या दो आइटम मिनिमम लेके आते थे। मैं देखता अभी होता कि मैं खा नहीं पाऊंगा इतना होते तो ये प्रेम था अब एक दूसरे से तो ही हम सीख सकते कि हमारे पास कुछ भी नहीं है लेकिन पड़ोसी आपको इतने मदद करेंगे है ना तो आपके पास पूरा छप्पन भोग बन जाते हैं भगवान को देने के लिए है ना। तो ये जो है भक्ति में जीवन में इस प्रकार सा है। तो जैसे कुछ साल पहले भगवान उडुपी के लिए उडुपी कृष्ण उनके लिए 1 करोड़ का पोशाक डायमंड ड्रेस अर्पित किया गया तो उसका चर्चा इतना जोरदार हुआ पत्रकार लोग आजकल मीडिया ना पहले तो इतना मीडिया ये नहीं था क्यों भगवान को इतना ये इतना गरीब है गरीबों को खिलाओ उनका ये करो उनको देने से क्या होता है। तो उनके जो उडुपी मठ का जो तभी तत्कालीन जो ये थे आचार्य थे उन्होंने बोले कि कोई अगर साधारण व्यक्ति मंत्री तंत्री आता है तो उनके लिए इतना करोड़ रुपया खर्च होता है। अभी पता नहीं आप लोग को पता नहीं कुछ महीने पहले भारत अमेरिका के प्रेसिडेंट वो दिल्ली शहर में आए थे आपको पता है दिल्ली शहर के शहर ना पदम पदम मृत्यु के ये अब सांस भी ठीक से नहीं ले सकते तो कई दिनों से बड़े बड़े मशीन लगा के वो जो होटल में रहा करते थे उस होटल के आजू बाजू को अमेरिका जैसे बना गया इतना शुद्ध वातावरण गया, मतलब हवा को क्या किया गया, प्यूरिफाई किया गया, तो कितना करोड़ में खर्च क्या होगा एक साधारण व्यक्ति के लिए, है ना। तो भगवान के लिए क्यों नहीं हम कर सकते, भगवान के लिए क्यों नहीं कर सकते, है ना। तो इसलिए एक छोटा सा ये है, तो भगवान को सेवा करने के लिए कोई भी कमी नहीं होना चाहिए, है ना। तो एक व्यक्ति था, बहुत ही धन गरीब व्यक्ति था, लेकिन भगवान को हर दिन एक्चुअली क्या करता था, फूल खरीद के तोड़ मोड़ के नहीं, जो भी फूल मिलता था पैसा से खरीद के बना के माला अर्पण करता था भगवान को। तो सुबह सुबह गया था एक्चुअली माला का फूल खरीदने के लिए, उसी समय राजा के मंत्री भी आए थे, तो वो भी पहुंच गया एक्चुअली। तो उसने बोले कि एक पैसा से शुरू हुआ एक पैसा, तो उसने राजा का मंत्री बोला मैं दो पैसा दूंगा। तो ऐसे बढ़ते गया तो उसका मूल्यांकन इतना हो गया, और वो भी जितने लगा था कि वो जितने बोलेंगे मैं उससे ज़्यादा बोलूँगा। तो एक समय आ चली कि राजा का मंत्री चौंक हो गया, इतना उसका तो मूल्य इतना नहीं है, मैं कितना मूर्ख हूँ, अगर इतना पैसा मैं लूँगा तो राजा मेरे को कितना पिटाई कर डाले ना। तो उसने बंद कर दिया आगे फिटिंग, उसमें आगे ऑप्शन होता है ना। तो ये भगवान का भक्त था एक्चुअली, तो उसने तो बोल दिया था उतने मिलेगा, उसके पास उतना पैसा नहीं था, तो उसको बोला था रुको। उसने घर गया, अपने घर को उसने बेचा और वापस आया, उस पैसा से उसको दिया और फूल खरीद के लिया और भगवान को अर्पण किया। भगवान को जो मारा फैला था, और राजा आए थे, राजा भी आते थे दर्शन करने के लिए, तो राजा दर्शन किए तो देखे भगवान का सिर झुका हुआ है। अब भगवान क्या हो गया, भगवान का सर क्यों झुका हुआ है? तो भगवान ने उसको फिर अंतकरण से बताया कि मैं तो मेरे भक्त के सामने आज झुक गया, क्योंकि उसने अपने सर्वस्व बेच के आज उस मुनि ने ये माला अर्पण किया, इसलिए मैं इतना शर्मिंदा हूं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की।